सभी सो गए थे, पर अहाना की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। अक्षय ना चाहते हुए भी उसके मन में घुसपैठ कर गया था। दिल बेचैन था और छत पर तन्हाई में खड़ी वो खामोशी से अपनी उंगली में चमकती रिंग टटोल रही थी। अक्षय का स्पर्श इतने वक्त बाद भी उसके हाथों पर ताज़ा था, मानो अब भी उसकी हथेली को उसने थामा हुआ हो। क्या कर रही है यहाँ इस वक्त अकेले? अहाना अक्षय के ख्यालों में खोई हुई थी जब पल्लवी की आवाज़ सुनकर वो उन ख्यालों से बाहर आई। चौंक कर नज़रें घुमाई तो पल्लवी उसके बगल में खड़ी थी। शादी की खुशी उसके चेहरे पर नूर बनकर बिखरी हुई थी। उसका रूप निखर गया था, हल्दी से रंग भी दमक उठा था, या शायद अपनी मोहब्बत के मुकम्मल होने के एहसास का असर था। दोनों हाथों पैरों में मेहंदी लगाए वो मिलन की घड़ियों को गिन रही थी। पल्लवी को यहाँ देखकर अहाना हौले से मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, अजीब सा लग रहा था तो सोचा ठंडी हवा में आ जाऊं, अब यहाँ आकर बेहतर महसूस कर रही हूँ। तू उदास है अहाना, कुछ हुआ है? क्या अक्षय जी के साथ कुछ हुआ है? पल्लवी, जो अक्षय के जिक्र से उसके चेहरे पर आई उदासी भांप गई थी, अकेले में मौका देखकर अपने दिल का शक जाहिर कर दिया। अहाना आकाश को तकते हुए मुस्कुरा दी। नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, बस एक अधूरापन है जो थलता है, एक डर है जो चैन नहीं आने देता, लगता है जैसे कहीं रेत की तरह सब हमारे हाथों से फिसल ना जाए। उसके खोए हुए मायूसी भरे अल्फाज और चेहरे की उदासी बहुत कुछ बयां कर रहे थे। पल्लवी कुछ पल उसे देखती रही, फिर संशय भरे स्वर में बोली, अनु, तेरी अक्षय जी से बात होती है ना? तेरे और उनके बीच सब ठीक तो है?
सब ठीक है, बस सोचते हैं कि कुछ वक्त बाद अपना घर छोड़कर जाना होगा, वो भी इतनी दूर।
बस, अहाना ने बात बदल दी और उसे अधूरी छोड़ दिया। पल्लवी का ध्यान भटकाया था उसने। जब भी वो अक्षय से बात को लेकर सवाल करती, यूं ही बात टाल जाती, पर आज पल्लवी उसकी बातों में नहीं आई थी। उसने अहाना के कंधों को थामते हुए उसे अपनी ओर घुमा लिया और गंभीरता से बोली, अनु, सच सच बता, अक्षय जी से तेरी बात होती है या नहीं? अहाना का अब सब्र जवाब दे गया, उससे पल्लवी से और झूठ नहीं बोला गया। बेस्ट फ्रेंड थी वो उसकी, हर बात उससे शेयर करती थी, कभी कुछ नहीं छुपाया था, पर अक्षय से जुड़ी बात अपने दिल में दबा गई थी, लेकिन आज उससे रहा नहीं गया। उसने सर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, नहीं, उन्होंने कभी फ़ोन ही नहीं किया। कभी कभी हमें लगता है कि कहीं वो इस रिश्ते से नाखुश तो नहीं, उन्हें हमसे बात करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्हें हम पसंद नहीं हैं। अहाना ने अपना डर उसके सामने जाहिर कर दिया था। उसे यूं उदास और मायूस देखकर पल्लवी बहुत परेशान हो गई थी, पर अहाना की बातें सुनकर वो मुस्कुरा पड़ी। पागल लड़की, क्या क्या बकवास सोचती रहती है तू, जिस तरह से वो सगाई के दिन तुम्हें देख रहे थे, कोई भी समझ जाए कि उनके दिल में तेरे लिए क्या एहसास है, और अगर तू उन्हें पसंद नहीं होती तो वो रिश्ते के लिए हाँ कहते ही क्यों? इसलिए इन बकवास ख्यालों को अपने दिल दिमाग से निकाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं। हो सकता है कि वो तुझसे बात करना चाहते हों पर हिचकिचा रहे हों। अहाना जो सर झुकाए उसकी बात सुन रही थी, उसने उसकी आखिरी बात सुनकर चौंकते हुए सर उठाया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसकी हैरानगी की वजह समझते हुए पल्लवी ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए आगे कहा, हाँ मेरी जान, शादी के नाम पर सिर्फ लड़कियों को ही घबराहट नहीं होती, लड़कों को भी होती है। रिश्ता जुड़ने के बाद बेचैनी और बेकरारी के साथ हिचक भी होती है, जो दोनों को ही होती है। अगर उस रिश्ते से लड़की की जिंदगी बदलने वाली होती है तो लड़के की भी बदलती है। मैं तुझे अपना खुद का अनुभव बताती हूँ, मेरी और तुम्हारे भैया की तो लव मैरिज है। शादी से पहले से हम एक दूसरे को पसंद करते थे, हालांकि बातें ज्यादा नहीं होती थीं, पर दिल में एहसास तो थे और सालों से एक दूसरे को जानते थे। उसके बावजूद रिश्ता जुड़ने के बाद तुम्हारे प्यारे भैया ने पूरे 2 महीने ना तो मुझसे बात की थी और ना नज़र उठाकर मुझे देखते थे, मुझे यूं इग्नोर करके जैसे मैं वहां थी ही नहीं, या जबरदस्ती मैं उनके सर पर सवार की गई हूँ। पहले वो तुम्हारे भैया थे, फिर मेरे होने वाले पति बने, और रिश्ता बदलने के साथ बहुत कुछ बदलता है। वो बेतकल्लफी बेबाकी नहीं रही थी हमारे दरमियान, मैं उनसे बात करने में हिचकिचाने लगी थी, तेरे घर जाने से कतराने लगी थी, क्योंकि उन्हें फेस करने से घबराती थी, समझ नहीं आता था कि कैसे व्यवहार करूं, क्या बात करूं, और ऐसा ही हाल तुम्हारे भैया का भी था। बचपन से मुझे सताते और परेशान करते आए हैं, पूरे हक से डांट भी देते थे और सजा भी सुनाते थे, पर रिश्ता जुड़ने के बाद उनका व्यवहार भी बदल गया था। पर धीरे धीरे मन की गांठें खुली, बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर सब नॉर्मल हो गया। सोच, हम तो एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते थे, तब हमारा ये हाल था। तुम और अक्षय जी तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, कभी ठीक से मुलाकात या बात तक नहीं हुई। जैसे तुझे उनसे बात करने से हिचक और घबराहट होती थी, हो सकता है वो भी उलझन में हो। वक्त दे खुद को, उन्हें और इस रिश्ते को। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है और अपने मन से ये ख्याल निकाल दे कि वो पसंद नहीं करते तुम्हें। वैसे भी अभी तक तो उनके घर से कोई आया नहीं है, हो सकता है कल वो खुद आकर तुझे सरप्राइज दे दें। फिर तुझे मौका मिल जाएगा तो बात कर लेना उनसे और चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। पल्लवी ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया। उसके और दृशांत के बारे में जानकर आहाना बुरी तरह चौंक गई थी और उनके बारे में जानने के बाद उसे पल्लवी की बातें सही लगने लगी थीं। मन में जो डर पनपने लगा था वो उसकी खुशियों को निगलने से पहले ही खत्म हो गया था और दिल काफी हल्का महसूस होने लगा था। उसके चेहरे पर से उदासी और गमों के बादल को छटते देखकर पल्लवी को भी कुछ सुकून मिला और उसने उसे पहले से लगा लिया। चल चलकर सोते हैं, शादी के दिन दुल्हन और उसकी बेस्ट फ्रेंड की आंखों के नीचे काले घेरे अच्छे नहीं लगेंगे, पल्लवी ने मजाकिया अंदाज में कहा और उसकी बात सुनकर आहाना मुस्कुरा दी। कई दिनों बाद आज वो बिना किसी चिंता फिक्र या गलत ख्याल के सुकून की नींद में सोई थी। अगले दिन शादी थी और सुबह से ही दोनों घरों में खूब चहल पहल थी। आज के दिन की रस्में शुरू हो चुकी थीं। आहाना भी दिल में एक उम्मीद लिए अपने भैया की शादी की रस्मों में शामिल हो रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली सहगल निवास में घर के चारों फर्द नाश्ते पर बैठे थे जब रूपाली जी कुछ नाराजगी से अभिजीत जी से मुखातिब हुई। अक्षय को क्यों संग भेज रहे हैं? न्योता पुराना है तो सिर्फ अन्वय को भेज दीजिए। पिछले 3-4 दिनों से दोनों में इस बात पर बहस चल रही थी जो आज फिर शुरू होते देखकर अभिजीत जी ने सख्त रवैया अपनाया और गंभीरता से बोले, अक्षय का जाना जरूरी है, अन्वय नादान है, उसे अभी रिश्तेदारी निभाने की समझ नहीं। अक्षय समझदार है, वो वहां सब संभाल लेगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, वो अक्षय का ससुराल है, शादी से पहले यूं लड़के लड़की का मिलना ठीक नहीं होता। वो शादी में जा रहा है भाग्यवान, बारात में जाएगा और अगले दिन वापस आ जाएगा, हमें तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। अभिजीत जी ने उनके दलील को सिरे से नकार दिया तो वो गुस्से में भुनभुनाते हुए वहां से चली गई। अक्षय परेशान सा उन्हें देखता रहा, फिर अभिजीत जी की तरफ मुड़ते हुए बोला, पापा अगर मम्मी नहीं चाहती तो रहने दीजिए। नहीं रहने दे सकते, हम तो खुद जाते पर अब हमारा जाना मुमकिन नहीं। अन्वय अभी छोटा है, रिश्तेदारी निभाना नहीं जानता, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। तुम साथ रहोगे तो उसे भी एक साथ ही मिल जाएगा और हम तुम्हारे जाने पर इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारा जाना जरूरी है।
वहाँ जाओगे तो न्योता पूरा जाएगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी कुछ वक्त आहाना बहू के साथ बिताने के लिए मिल जाएगा। आप दोनों को थोड़ा वक्त मिलेगा एक दूसरे को समझने का। 3 महीने में शादी है आप दोनों की, आहाना बहू की भी इच्छा होगी कुछ, इसलिए हमारी बात मानिए। हमें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है और आपकी माँ को हम संभाल लेंगे। चलो जल्दी से नाश्ता करो और तैयार होकर निकलो वरना देर हो जाएगी। अभिजीत जी के मुंह से ये बातें सुनकर अक्षय कुछ हड़बड़ा गया। हालांकि वो खुले मिजाज के थे पर इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। उनके आदेश को मानते हुए दोनों ने जल्दी नाश्ता किया और छोटे से बैग में अपने एक दिन की जरूरत का सामान रखकर अपनी कार से कानपुर के लिए निकल गए। वैसे खुश तो बहुत होंगे आप, इसी बहाने भाभी से मिलने का मौका जो मिलने वाला है आपको। अक्षय के बगल में बैठे अन्वय ने शरारत भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए अक्षय को छेड़ा। अक्षय जिसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था उसकी बात सुनकर उसने सर घुमाकर उसे देखा और भौं उठाते हुए बोला, मेरा तो पता नहीं पर तुम बड़े खुश और एक्साइटेड लग रहे हो, क्या बात है? अक्षय का सवाल सुनकर और गहरी नजरें देकर अन्वय हड़बड़ा गया पर तुरंत ही संभलते हुए बोला, हाँ तो मुझे भी तो अपनी भाभी से मिलने का मौका मिलने वाला है, हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है, मुझे तो भाभी बहुत पसंद है, इतनी स्वीट और क्यूट सी है, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और वो भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगी। बातों बातों में अन्वय ने अक्षय को फिर छेड़ दिया था और उसे जलाने की भी पूरी कोशिश की थी जिसमें वो कामयाब भी हुआ। उसने अन्वय पर से निगाहें फेर लीं और खुद में ही मन बड़बड़ाया। जिसकी होने वाली बीवी है वो यहाँ उनकी आवाज़ तक सुनने को तरस रहा है और भाभी का देवर यहाँ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग करने में लगा है। अक्षय के चेहरे के बिगड़ते भाव देखकर अन्वय मन ही मन हंस पड़ा। फिर अंतरा का ख्याल दिल में आया और लबों पर गहरी मुस्कान फैल गई। कार में धीमा म्यूजिक बज रहा था। अन्वय अंतरा के बारे में सोचते हुए मन ही मन प्लानिंग कर रहा था जबकि अक्षय कार ड्राइव करते हुए यही सोच रहा था कि आज आहना से मिलकर कैसे उसका कुछ वक्त चुराएगा अपने लिए, कैसे बात करेगा उससे, क्या क्या बात करेगा और आहना क्या उसे देखकर खुश होगी, उससे बात करेगी।